आज इशिका का अंतिम संस्कार होने वाला था। सभी राजवंश विला में इकट्ठे हुए थे उसे अंतिम विदाई देने के लिए। इशिका ने मौका पाकर राधिका के हाथ में एक पेपर छोड़ा था ताकि वो कोई मैसेज दे सके। हालांकि इशिका ने वो पेपर राधिका की सेफ्टी के लिए छोड़ा था, उसे नहीं लगा था कि राधिका उस पर कोई मैसेज लिखेगी। पर जब इशिका ने राधिका का मैसेज पढ़ा तो वो दंग रह गई। राधिका ने उसे बताया था कि आदर्श ही उसका कातिल है। इशिका ने अपने मन में कहा, लेकिन आदर्श सिंघानिया तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है। जिसने भी ये काम किया है वो काफी शातिर तरीके से किया गया था, इतना चालाकी कि कोई सबूत नहीं मिला। अभिमन्यु भी काफी समय से पता लगाने की कोशिश कर रहा है, मैंने भी दिशांक को भी भेजा था लेकिन सारे सबूत मिटा दिए गए थे। तो क्या आदर्श सिंघानिया इतना पावरफुल है या वो किसी की मदद ले रहा है? क्या अब तक मैं एक धोखे में जी रही थी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मैंने कुछ किया तो कहीं वो मेरी माँ को नुकसान ना पहुँचा दे। राधिका के बारे में सोचकर इशिका कांप गई थी। उसे काफी समझदारी से सब कुछ संभालना था। अब तक उसे यही लगता था कि ईशानी उसे बार बार जिस जानलेवा खतरे के लिए आगाह करती रही थी वो सब ऐसे ही था। अब आदर्श के इसमें शामिल होने से इशिका को कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी थी। उसकी जान को वाकई खतरा था। क्या जो भी मेरे साथ होता आया है उसमें आदर्श का भी हाथ था? मुझे माँ को उसके चंगुल से निकालना होगा, लेकिन मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगी। किसकी हेल्प लूँ? अभिमन्यु की? नहीं, मैं अभिमन्यु की हेल्प नहीं ले सकती हूँ। उसे पता चला तो वो मुझे सेफ रखने के लिए इन सबसे दूर ले जाएगा, इशिका ने सिर पकड़कर कहा। इस वक्त वो कश्मकश की स्थिति में थी। काफी सोचने के बाद इशिका के दिमाग में एक ही नाम आया। उसने मन ही मन कहा, केशव सिंघानिया। उन्हें माँ की परवाह भी है और वो मेरी मदद भी कर सकते हैं। जानती हूँ माँ उनसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त वही मेरा साथ दे सकते हैं। उन्होंने ही मुझे माँ के होश में आने की बात बताई थी। इशिका ने केशव की मदद लेने का फैसला किया। फिर उसने इधर उधर देखा तो इशिका यानी ईशानी की डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। इशिका ने जल्दी से मोबाइल निकाला और केशव को मैसेज लिखते हुए कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। राधिका सिंघानिया खतरे में है। मुझे लगता है कि आदर्श सिंघानिया उनके साथ कुछ कर रहे हैं और इशिका की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। इशिका ने बिना छुपाए हुए उन्हें सब कुछ बता दिया था। फिर उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि राधिका ने केशव से कभी ना मिलने की कसम खाई थी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? सामने से केशव ने पूछा। मुझे उन्होंने एक नोट दिया था। असल में कल जब मैं उनसे मिलने गई थी तब मैंने उनके हाथ में थर्मल पेपर छोड़ा था। उन्होंने हेल्प मांगी है और हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी, इशिका ने जवाब में कहा। केशव से मदद मांगने के बाद इशिका ने ऊपर देखा तो ईशानी की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था। अभिमन्यु उनके साथ नहीं जा रहा था तो लोगों में आपसी बातचीत और कानाफूसी शुरू हो गई थी। ये क्या, मिस्टर राजवंश अपनी पत्नी का दाह संस्कार नहीं करेंगे क्या? एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये उनकी पत्नी है। वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। सबके कहने पर वो कुछ अंतिम क्रियाएं करने के लिए तैयार जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका अभी भी यही मानना है कि उनकी पत्नी जिंदा है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। हाँ, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। क्या हालत बना रखी है उन्होंने अपनी, ऐसे लगता है जैसे पिछली कुछ रातों से वो सोई भी नहीं है, भीड़ में किसी ने कहा। इशिका ने उनकी बातों को अनदेखा किया और राधिका को देखने लगी। आदर्श ने राधिका को गाड़ी में बिठा दिया था। इस भीड़ के बीच इशिका ने किसी को कहते हुए सुना, मिसेस सिंघानिया भी बहुत दुखी हैं। मिस्टर सिंघानिया ने देश छोड़ने का निश्चय किया है। उन्हें लगता है कि जगह छोड़ने के बाद शायद राधिका सिंघानिया अपनी बेटी को भूल सके। जैसे ही इशिका ने ये सुना उसके पैर वहीं पर जम गए थे। उसने अपने मन में कहा, तो ये मेरी माँ को यहाँ से दूर ले जाना चाहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इशिका को घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बिना सोचे समझे गाड़ी के पीछे जाने लगी। वहीं राजवंश हाउस के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। उस कार के अंदर केशव और अरमान थे। केशव के पास एक पुराना मोबाइल था, उसमें कुछ संदेश थे। केशव उन्हें देख रहे थे। वे राधिका के कुछ आखिरी संदेश थे जब उसने लगभग 22 साल पहले उसे मिलने के लिए बुलाया था। उन मैसेजेस को देखने के बाद केशव ने अपना फोन चेक किया तो उसमें इशिका के संदेश आ चुके थे। उन्होंने गहरी सांस ली और सख्त अंदाज में अरमान से कहा, तुम हमारे साथ यहाँ कितने आदमी लाए हो? लेकिन अंकल, ये गलत होगा, हमारी एक रेप्यूटेशन है। ऐसे में हम राधिका सिंघानिया को किडनैप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अरमान ने जवाब दिया, जिस पर केशव उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। अरमान ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, हमारे प्राइवेट गार्ड और यहाँ काम करने वाले गार्ड को मिलाकर कुल 30 लोग होंगे, इतने काफी नहीं होंगे। ऐसा करो, अभिमन्यु से बात करो और उसे कहो कि हमें सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है, केशव ने जवाब दिया। वो अपनी पूरी तैयारी करके जाना चाहते थे। अरमान ने उनकी बात मान ली और तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकला। अभिमन्यु उसे राजवंश हाउस के दरवाजे पर ही मिल गया था क्योंकि वो इशिका के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं गया था। अरमान अभिमन्यु के पास गया और बोला, अंकल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम हमारे लिए कुछ गार्ड्स का इंतजाम कर सकते हो? मैं पृथ्वी से बात करता हूँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया और तुरंत पृथ्वी से बात करने लगा। उसने ये तक नहीं पूछा कि उन्हें गार्ड्स की जरूरत क्यों है। पृथ्वी से बात करने के बाद अभिमन्यु ने कहा, हो जाएगा। अरमान ने उसे थैंक्स कहा और जाने लगा। फिर अचानक उसके कदम वहीं रुके। अभिमन्यु काफी परेशान नजर आ रहा था, उसने इशिका के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं लिया था। अरमान ने अफसोस जताते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो काफी छोटी थी और तुमसे बहुत प्यार करती थी ना, जो भी हो तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तुम उसके पति हो और उसका हक बनता है कि तुम उसकी चिता को अग्नि दो। अभिमन्यु ने अरमान का हाथ झटका और सिर हिलाकर कहा, अपनी बकवास बंद करो। इतना कहकर अभिमन्यु अंदर चला गया। वहीं अरमान को ये लग रहा था कि इशिका के जाने के सदमे की वजह से वो पागल होने लगा है। इस बीच केशव गाड़ी के अंदर अकेले थे। उन्होंने खुद से कहा, ज्यादा गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, आदर्श अकेले इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकता जहां सबूत तक मिटा दिए गए हैं। मुझे राधिका को वहां से कुछ भी करके बचाना होगा। सब अपनी तरफ से राधिका को बचाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। इशिका आदर्श की गाड़ी के पीछे जा रही थी, तभी तरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। तरुण ने उसे घूरते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम, हमारा काम खत्म हो गया है। वो मुझे मिस्टर सिंघानिया ने मिसेस सिंघानिया का हालचाल पूछने के लिए भेजा है, इशिका ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। तरुण ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना रात को वापस लौट आना। हालांकि इशिका के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, फिर भी तरुण उसे अजीब तरीके से देख रहा था। इशिका ने उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसे रात को ही वापस आने को क्यों कह रहा है। इशिका ने बस उसकी बात मान ली और जल्दी से वहां से चली गई। इस वक्त उसके लिए राधिका को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। इशिका के जाते ही तरुण वापस अंदर की तरफ गया और अभिमन्यु को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, मुझे आपकी पत्नी के बारे में कुछ बात करनी है। इशिका का जिक्र आते ही अभिमन्यु के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसने गार्ड को साइड में हटाने को कहा। तरुण आगे आया और अभिमन्यु के कान के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे भी आपकी तरह यही लगता है कि आपकी पत्नी जिंदा है।
तरुण की बात सुनकर अभिमन्यु चौंक गया था। इशिका की जिंदा होने की बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी, ऐसे में तरुण इस बारे में कैसे जान सकता था? अभिमन्यु ने जवाब देने से पहले इधर उधर देखा और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो जानना चाहता था कि तरुण इस बारे में कितना और क्यों जानता है, कहीं वो उनके लिए कोई खतरा साबित ना हो जाए। इशिका जल्दी से राजवंश विला से बाहर निकली तो उसने अरमान को अपनी गाड़ी के पास देखा। वो बिना सोचे समझे गाड़ी के पास गई और अंदर जाकर बैठ गई थी। केशव ने ही उसे मैसेज करके वहां आने को कहा था। अचानक अपनी गाड़ी में एक अनजान लड़की को देखकर अरमान ने सख्त लहजे में पूछा, अरे तुम कौन हो और इस तरह हमारी गाड़ी के अंदर जाकर कैसे बैठ सकती हो? तुमने इस तरह अपना चेहरा क्यों ढंक रखा है? इशिका की तरफ से केशव ने जवाब देते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है और मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। अरमान ने फिर हाँ में सिर हिलाया। वो इशिका की तरफ गौर से देखने लगा। इस बीच एक गार्ड गाड़ी के पास आया और उसने केशव से कहा, सर, आदर्श सिंघानिया राधिका सिंघानिया को लेकर सिंघानिया मेंशन गया है, आप ऑर्डर दीजिए, हमें आगे क्या करना है। सिंघानिया मेंशन को चारों तरफ से घेर लो, मैं नहीं चाहता गलती से भी आदर्श को भागने का मौका मिले, केशव ने सख्त अंदाज में कहा। गार्ड उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए तुरंत वहां से चले गए। उसके जाते ही केशव ने अरमान को गाड़ी सिंघानिया मेंशन की तरफ ले जाने को कहा। इशिका के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, उसे राधिका के लिए डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदर्श राधिका को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था। वो उन्हें लेकर अपने बेडरूम में था। राधिका को कपड़े बदलवाने थे, इसलिए श्रुति ने आदर्श से कहा, सर कृपया आप बाहर चले जाइए, मुझे राधिका को चेंज करवाना है। तुम रहने दो श्रुति, मैं ये कर लूंगा, आदर्श ने जवाब दिया, जिस पर राधिका उसकी तरफ घूरकर देखने लगी। उसका जवाब सुनकर श्रुति भी हड़बड़ा गई थी, राधिका के सारे काम वही करती थी। आज अचानक आदर्श के कपड़े बदलवाने की बात सुनकर वो चौंक गई। उसकी नज़रों को समझते हुए आदर्श ने कहा, ऐसे मत देखो श्रुति, हम दोनों पति पत्नी हैं, पिछले 22 सालों का रिश्ता है हमारा, अब मैं राधिका के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, श्रुति ने हार मानते हुए कहा और फिर एक नज़र राधिका की तरफ देखकर बाहर चली गई। उसके जाते ही आदर्श ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वहीं राधिका को इस वक्त श्रुति पर गुस्सा आ रहा था। वो इस तरह उसे आदर्श के हवाले करके चली गई थी। आदर्श ने राधिका के कदमों में बैठकर उसका मुंह पकड़ा और कहा, देखा सब मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। राधिका, अब तुम भी हार मान लो और मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, फिर मुझे तुम्हें इस तरह टॉर्चर नहीं करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें तकलीफ़ देना। राधिका बोल नहीं सकती थी, फिर भी उसने गुस्से से नामे सिर हिलाया। उसकी इस हरकत पर आदर्श को गुस्सा आ गया था। उसने राधिका का मुंह छोड़ दिया था और फिर गुस्से में बोला, लगता है तुम्हें सबक सिखाना भी पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से जाने से पहले अभिमन्यु को जरा सा भी किसी गड़बड़ का एहसास हो। वैसे भी वो कल रात यहाँ आया था, लेकिन बहुत से तरीके हैं तुम्हें सबक सिखाने के। आदर्श ने राधिका को उठाया और फिर उसे बिना व्हीलचेयर के घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। उसने अंदर जाकर बाथटब भरा और फिर राधिका की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा पानी में डाल दिया था। हार मान लो राधिका, वरना इतनी तकलीफ होगी कि जिंदगी मुश्किल लगने लगेगी, मारने में तुम्हें नहीं दूंगा, आदर्श ने गुस्से में कहा और फिर एक झटके में राधिका का मुंह पानी से बाहर निकाल दिया था। पानी में रहने की वजह से राधिका को तकलीफ हो रही थी। वो गहरी सांस ले रही थी। उसने अपने मन में कहा, नहीं, मैं नहीं मर सकती हूँ। मेरी बेटी मौत को हराकर वापस आई है। अगर मैं मर गई तो वो फिर से दुखी रहने लगेगी। मुझे जिंदा रहना होगा। राधिका को इंजेक्शन लगा हुआ था, फिर भी उसे अंदर से ताकत मिल रही थी। ये सब इशिका की वजह से था। वो अपने हाथ से आदर्श को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदर्श ने फिर से उसका चेहरा पानी के अंदर डाल दिया। धीरे धीरे इंजेक्शन का असर कम होने लगा था। राधिका ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आदर्श ऊपर राधिका को टॉर्चर करने में लगा हुआ था। इस बीच केशव और ऋषिका सिन्हानिया विला में पहुंच चुके थे। उनके आने से पहले ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया गया था। केशव और ऋषिका सीधे ऊपर पहुंचे। श्रुति अचानक उन्हें देखकर घबरा गई थी। वो डरते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या चल रहा है? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। ऋषिका ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, मिसेस सिन्हानिया कहाँ है? वो ऊपर अपने बेडरूम में है, श्रुति ने जवाब दिया। ऋषिका और केशव ने आगे कुछ नहीं पूछा और बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वे आदर्श के कमरे के आगे पहुंचे, उन्होंने अंदर से राधिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। प्लीज आदर्श, मुझे छोड़ दो। राधिका रोते हुए आदर्श को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल चैप्टर नहीं दिया था तो आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा रखा है। कृपया पढ़कर रेटिंग और कॉमेंट किया करो।